A world of wonder awaits at Nemacolin. The Grand Lodge will surprise and delight with 56 stunning suites and 5-star butler services. Indulge in libations at the Circle Bar and Study before you savor the new and enchanting Fawn and Fable restaurant, where the best parts of a traditional steakhouse and a fairy tale castle create a magical dining experience. With fine dining, a spa, and over 100 adventures, golf, art, and wildlife experiences, whatever your imagination holds, Nemacolin has the key. Visit Nemacolin.com for more information.
Hey there, you're listening to The Quint.
Ek shehnshah ne banwa ke hansi taj mahal sari duniya ko mohabbat ki nishani di hai.
लीडर फिल्म का ये गाना तो आपने सुना ही होगा. दिस वन इज पिक्चराइज्ड ऑन दिलीप कुमार एंड वैजयंती माला. ये गाना एक्चुअली शकील बदायूनी की नज्म है, जिसमें शायर ताजमहल को एज अ सिंबल ऑफ लव डिक्लेयर कर रहा है, मान रहा है ताजमहल पर. लेकिन ऐसी भी नज्म लिखी गई है जिसका ये कहना है कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि मोहब्बत का मजाक है जो एक शहंशाह ने उड़ाया है. लेकिन ताजमहल को मोहब्बत और मोहब्बत के मजाक के सिंबल के अलावा एक और तरह की निशानी माना जाता है. ताजमहल एज अ सिंबल ऑफ रिलीजन, हंसी आ रही है ना. और ऐसा मानने वाले कोई बहुत ही पढ़े लिखे दानिशमंद हिस्टोरियंस या स्कॉलर्स नहीं हैं, पोइट्स भी नहीं हैं, बल्कि नफ़रत फैलाने वाले जो लोग हैं उन्हीं के दिमाग की उपज है कि भाई जो ताजमहल है वो इस्लाम का सिंबल है. अब ताजमहल असल में किसका प्रतीक है, ये काम अगर हम आर्टिस्ट्स और शायरों पर छोड़ दें तो बेहतर रहेगा, है ना. इसीलिए ताजमहल को किस नज़र से देखा गया है उसी पर आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे. द क्विंट पर आप सुन रहे हैं उर्दू नामा, मैं हूँ फबीहा सैयद. ताजमहल को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है उससे आप ना वाकिफ तो नहीं होंगे, है ना. मतलब सोशल मीडिया पर ताजमहल को लेकर जो भी अभी तक कहानियाँ चली हैं पिछले 2-3 हफ्तों में वो सबको मालूम ही है. लेकिन फिर भी सेल्फ प्रेजर्वेशन के हाथों मजबूर होकर इस खबर को फॉलो अगर आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं है. आपको एक लाइन में बता देती हूँ कि कुछ पॉलिटिशियंस ने ताजमहल को इस्लाम से जोड़ दिया है. इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक मशहूर कर दिया कि जिस ज़मीन पर ये इमारत बनी हुई है उस जगह पर हिंदू मंदिर था जिसका नाम तेजो महालया था पहले. पेटिशन दायर की गई जिसमें एक ऐसे पैनल बनाने की मांग की गई जो द रियल हिस्ट्री ऑफ ताजमहल के बारे में फैक्ट्स लेकर आए और कायल कर दे बाकी जनता को. इन एडिशन ताजमहल के 20 से ज़्यादा जो कमरे लॉक्ड पड़े हुए हैं उन्हें खोलने की भी मांग की गई है. वो इसलिए क्योंकि इन लीडर हजरात को शक है कि इन कमरों में हिंदू देवताओं की मूर्तियां मिल सकती हैं. अब इस पॉडकास्ट में इस खबर को लेकर मज़ीद तबसरा तो करेंगे नहीं, हाँ इतना ज़रूर कहूँगी कि द क्विंट पर हमने कुछ साल पहले 2 वीडियोस बनाई थी. तब भी ताजमहल को लेकर जो कंट्रोवर्सी चली थी कि ये जो मॉन्यूमेंट है ये इस्लाम का प्रतीक है वगैरह वगैरह वॉट नॉट, तो उन वीडियोज़ में एक लिटरेरी हिस्टोरियन और राइटर रक्षंदा जलील हैं, उन्होंने बहुत ही आसान जबान में बताया है कि कैसे ताजमहल में अगर आप मजहब तलाश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा. ये वीडियो आप पूरी द क्विंट पे देख सकते हैं, लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा वो मैं आपके लिए यहाँ पे एक बारी प्ले करना चाहती हूँ.
दिस इज़ नॉट अ मुस्लिम मोन्यूमेंट, दिस इज़ नॉट अ मोन्यूमेंट टू इस्लाम. ये कुव्वतुल इस्लाम या ऐसे कोई नाम का कि मॉस्क नहीं है, ये कोई इस्लामिक बिल्डिंग नहीं है. हाँ, इसकी एस्थेटिक्स ज़रूर ऐसी हैं जिसको आप लूजली स्पीकिंग कह सकते हैं इस्लामिक आर्किटेक्चर, जबकि उसमें भी लोगों को एतराज़ है कि इस्लामिक आर्किटेक्चर क्या चीज़ होती है. क्लियरली ये एक मॉसोलियम है, इसमें कोई दो राय नहीं है. इससे जुड़ा हुआ एक मस्जिद है जो अक्सर हुआ करती थी नमाज जनाजा के लिए, सो दैट वॉज़ अ फ्यूनरी मॉस्क. सो आई थिंक इट्स एंटीसीडेंट सीम क्लियर इनफ. But as for Sahir's poem, it's important because it tells us that this is actually a monument built by people. It may very well be a reflection of an emperor's love for his empress, but it was built by ordinary people. It was built by common people. So Sahir, when he says, Taj tere liye ek مزارِ الفتی صحیح فار یو ہی از ٹیلنگ ہز بلاوڈ فار یو اٹ مے ویل بی اے مینیفیسٹیشن آف لو تجھ کو اس وادی رنگین سے عقیدت ہی صحیح میرے محبوب کہیں اور ملا کر مجھ سے سو یو مے بی اٹیچ ٹو اٹ یو مے تھنک ہی سیلنگ دا بلاوڈ یو مے تھنک اٹس اے بیوٹیفل رومانٹک سیٹنگ اینڈ یو نو دا گارڈن ٹوم دا فیونرل چیمبر دا ہول سیٹنگ دا ایمبیونس جمنا کے کنارہ اینڈ آل آف دیٹ سو فار یو اٹ مے بی اے ویری رومانٹک سیٹنگ بٹ آئی ووڈ مچ رادر وی میٹ سم ویئر ایلس بیکاز دس پلیس ود آل اٹس آپلنس اٹس ایکسٹراویگنس اٹس سیلف انڈلجنس فار ہم اٹ سیمس ویری شوئی اٹ سیمس ویری آسٹنٹیشیس And in a word, it seems very exhibitionist.
تاج محل پر ایک اور ویڈیو ہے جو آپ کو کوئنٹ پر مل سکتی ہے. اس میں پشپیش پنت جو ہسٹورین ہیں وہ سرے سے ان دعووں کو خارج کر رہے ہیں جو تاج محل کو مذہبی جامع پہنا رہے ہیں. یہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کا بھی ایک چھوٹا حصہ میں پلے کر رہی ہوں.
I think it would be an extremely stupid person, totally ignorant of the either English language or history, to call Mughals barbaric. Mughals came to India as a nomadic people, not particularly civilized. Babar, after all, belonged to a small principality of Fargana, was chased out by his Uzbek uncle, came to India. But once they struck root here, they became inheritors to the great Sultanate period. Before the Mughals, the Muslims, the Mamluks, the Khiljis, the Tughlaqs, the Sayyids ruled, I mean, here we are sitting in the Lodi Garden. They also consciously, in days like Akbar and Shah Jahan, tried to have a fusion of what was local. They married with local Rajput princesses and they were as civilized as anybody can claim to be.
Kul mila kar ye to sabit ho gaya hai ki Taj Mahal is not and can never be a symbol of any religion. But Taj Mahal ko as a symbol of mockery dekha gaya hai. Haan, ye ek aisi cheez hai jisse hum taleem ke aitbaar se, literature ke aitbaar se, is par gaur kar sakte hain, karna bhi chahiye. Baaki sare jo daave hain na, aap unhe suniye ek kaan se aur nikal dijiye dusre kaan se. Anyway, coming back to Taj Mahal, پاکستانی شاعر اور اردو اور پنجابی کے اسکالر جمیل ملک صاحب رہ چکے ہیں. انہوں نے خوبصورت عمارت میں, مطلب ہر خوبصورت عمارت میں ان لوگوں کے ہونے کی بات کہی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ان عمارتوں کو کھڑا کیا ہے, اور ایسی عمارتوں کو وہ تشبیہ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل تاج محل ہیں. وہ لکھتے ہیں, کتنے ہاتھوں نے تراشے ہیں حسین تاج محل, کتنے ہاتھوں نے تراشے یہ حسین تاج محل, جھانکتے ہیں در و دیوار سے کیا کیا چہرے. کہ ہر عمارت میں ہر اس انسان کی شکل آپ کو مل جائے گی جس نے اس عمارت کو بنانے میں, تعمیر کرنے میں کنٹریبیوٹ کیا ہے. کیفی اعظمی کی جو نظم ہے تاج محل, اس میں بھی یہ سینٹیمنٹ آپ کو ملے گا, بلکہ بیزاریت جھلک رہی ہے اس نظم میں جب کیفی اعظمی تاج محل کو مزار پرستی کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اسے مارجنلائزڈ لوگوں کے ایکسپلوئٹیشن کا سمبل بتاتے ہیں. تاج محل کو یہاں تک کہ وہ ایک امیر غریب کے بیچ جو تقسیم ہے, جو ڈیوائیڈ ہے, اس کی ایسی مثال بتاتے ہیں جو دیکھنے والی ہے. کیفی لکھتے ہیں, دوست میں دیکھ چکا تاج محل واپس چل, دوست میں دیکھ چکا تاج محل واپس چل, مرمری پھولوں سے ابلتا ہیرا, چاند کی آنچ میں دہکے ہوئے سیمی مینار, ذہن شاعر سے کرتا ہوا چشمک پہم ایک ملکہ کا ضیا پوش و فضا تاب مزار, خود بخود پھر گئے نظروں میں بہ انداز سوال وہ جو رستوں پہ پڑے رہتے ہیں لاشوں کی طرح, خشک ہو کر جو سمٹ جاتے ہیں بیرس آساب, دھوپ میں کھوپڑیاں بچتی ہیں تاشوں کی طرح, دوست میں دیکھ چکا تاج محل واپس چل. یہ دھڑکتا ہوا گنبد میں دل شاہ جہاں, یہ در و بام پہ ہستا ہوا ملکہ کا شباب, جگمگاتا ہے ہر ایک تہ سے مذاق تفریق, اور تاریخ اڑاتی ہے محبت کی نقاب چاندنی, اور یہ محل عالم حیرت کی قسم دودھ کی نہر میں جس طرح ابال آ جائے, ایسے سیاح کی نظروں میں کھپے کیا یہ سما جس کے فرحات کی قسمت کا خیال آ جائے. دوست میں دیکھ چکا تاج محل واپس چل, یہ دمکتی ہوئی چوکھٹ یہ تلا پوش کلس, انہیں جلووں نے دیا قبر پرستی کو رواج, ماہ و انجم بھی ہوئے جاتے ہیں مجبور سجود, واہ آرام گاہ ملیکہ معبود مزاج, دیدنی قصر نہیں دیدنی تقسیم ہے یہ, روئے ہستی پہ دھما قبر پہ رقص انوار, پھیل جائے اسی روزہ کا جو سنٹا دامن, کتنے جاندار جنازوں کو بھی مل جائے مزار, دوست میں دیکھ چکا تاج محل واپس چل. शायर ताजमहल देखकर सिर्फ बेजार हुआ है, लेकिन एक और शायर हैं जिन्होंने ताजमहल को बिना देखे आगरा में बिना कदम रखे एक ऐसी नज़्म लिख दी है जो ताजमहल पर लिखी हुई नज़मों में शायद सबसे ऊंचा मकाम रखती है, ऐसा मान सकते हैं। साहिल लुधियानवी की मैं बात कर रही हूँ। साहिल लुधियानवी की नज़्म ताजमहल भी मैं अब आपको सुना रही हूँ। साहिल लिखते हैं, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, तुझको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म-ए-शाही में गरीबों का गुजर क्या मानी, सप्त जिस राह में हो सत्वत-ए-शाही के निशां, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी, मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीरे वफा, तूने सत्वत के निशानों को तो देखा होता, मुर्दा शाहों की मकाबिर से बहलने वाली अपनी तारीख मकानों को तो देखा होता। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके, लेकिन उनके लिए तशहीर का समा नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। ये इमारत मकाबिर ये फसीलें ये हिसार, मुतलकुल हुक्म शहनशाहों की अजमत के सुतून, सीनाए दहर के नासूर हैं कोहना नासूर, जज्ब है उनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। मेरे महबूब उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है उसे शक्ल जमील, उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनाम नमूद, आज तक उन पे जलाई ना किसी ने कंदील, ये चमनजार ये जमुना का किनारा, ये महल ये मुनक्कश दर दीवार, ये मेहराब ये ताक, एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। जिसे सिंबल ऑफ लव मानकर लवर्स तस्वीरें खिंचवाते रहे हैं, टूरिस्ट आकर उसके सामने बैठकर बेंच के ऊपर तस्वीर खिंचवाते हैं, ये वही ताजमहल है जहां शायर अपने महबूब के साथ जाना ही पसंद नहीं करता। देखिए, लेकिन शकील बदायूनी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो यही मानते हैं कि इस मॉन्यूमेंट ने दुनिया को मोहब्बत की निशानी दे दी है। शकील बदायूनी लिखते हैं, एक मिनट ये गाना थोड़ा सा प्ले कर दूं, लीडर फिल्म का है जो शुरू में चलाया था, हाँ एक बार ही प्ले कर देती हूँ, उसके बाद नज़्म पढ़ती हूँ आपके लिए। एक शहनशाह ने बनवा के हसीं ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो हो ना सकेगी वो कहानी दी है। एक शहनशाह ने बनवा के हसीं ताज महल, ताज वो शमा है उल्फत के सनम खानी की, जिसके परवानों में मुफलिस भी हैं जरदार भी हैं, संगे मरमर में समाए हुए ख्वाबों की कसम, मरहले प्यार के आसान भी हैं दुश्वार भी हैं, दिल को एक जोश इरादे की जवानी दी है। एक शहनशाह ने बनवा के हसीं ताज महल, ताज एक जिंदा तसव्वुर है किसी शायर का, उसका अफसाना हकीकत के सिवा कुछ भी नहीं, इसके आगोश में आकर ये गुमा होता है जिंदगी जैसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। ताज ने प्यार की मौजों को रवानी दी है, एक शहनशाह ने बनवा के हसीं ताज महल, ये हसीं रात ये महकी हुई पुरनूर फजा, हो इजाजत तो ये दिल इश्क का इजहार करे, इश्क इंसान को इंसान बना देता है, किसकी हिम्मत है मोहब्बत से जो इनकार करे, आज तकदीर ने ये रात सुहानी दी है, एक शहनशाह ने बनवा के हसीं ताज महल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, एक शहनशाह ने बनवा के हसीं ताज महल। इसी तर्ज पर आखिर में अब आपके लिए मैं एक और नज़्म पढ़ रही हूँ परवीन शाकिर की। परवीन शाकिर जब लिखती हैं तो रोमांस ऐसा लगता है कि उसको एक नई ज़बान मिल गई है, क्योंकि ज़्यादातर नज़में रोमांस पर, बल्कि ज़्यादातर पोइट्री उर्दू की जो है वो जो मर्द हजरात हैं उनके कलम से निकली है, लेकिन जब औरतें लिखती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें एक वो इसलिए क्योंकि लगता है कि मेरे दिल की बात मेरे ही एक्सप्रेशन के साथ किसी दूसरी औरत ने लिखी दी है। सो परवीन शाकिर की नज़्म ताजमहल, वो भी आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ। लिखती हैं, संगे मरमर के खुनक बाहों में हुस्न खाबीदा के आगे मेरी आँखें शल हैं, गूंग सदियों के तनाजुर में कोई बोलता है, वक्त जज्बे के तराजू पे जरोसे मो जवाहिर की तड़प तोलता है, हर नए चांद पे पत्थर वही सच कहते हैं, उसी लम्हे से दमक उठते हैं उनके चेहरे, जिसकी लौ उम्र गए एक दिले शब्जात को महताब बना आई थी, उसी महताब की एक नर्म किरण सांचाए संग में ढल पाई तो इश्क रंगे अबदियत से सरफराज हुआ, क्या जब नींद है जिसको छू कर जो भी आता है खुली आंख लिए आता है, वाह वाह क्या जब नींद है जिसको छू कर, मकबरा है ताजमहल, वहां पे कोई दफ्न है तो उसको परवीन शाकिर कह रही हैं कि वाह क्या अजब नींद है जिसको छूकर, ताजमहल जो है वो नींद का प्रतीक है, उसे छूकर जो भी आता है खुली आंख लिए आता है, सो चुके ख्वाबे अबद देखने वाले कब के, और जमाना है कि उस ख्वाब की ताबीर लिए जाग रहा है। कितना डेलिकेट एक्सप्रेशन है परवीन शाकिर का अबाउट ताजमहल, दैट इट्स अ सिंबल ऑफ स्लीप। ओ माई गॉड, ओके, सो ज़माने के लिए ताजमहल या तो ख्वाब बन सकता है या हकीकत बन सकता है। ख्वाब की तरह इसे देखेंगे तो शाहजहाँ की बेपनाह मोहब्बत, बल्कि एक्चुअली ये कहना चाहिए कि लव एंड लॉस की दास्तान आपको दिखेगी। थोड़ी हकीकत पसंद अगर आप बनना चाहें तो ताजमहल को अ सोशल डिवाइड के तौर पे आप देख सकते हैं। इसके बनने में जो खून और पसीना बहा है मजदूरों का, कारीगरों का, जिनमें हिंदू भी शामिल थे, मुसलमान भी शामिल थे, और भी कई मजहब के लोग इसकी तामीर में शामिल होंगे, तो वो भी किया जा सकता है। बस यही कहा जा सकता है कि ताजमहल का मजहब से दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नहीं है। हल्का कर लें आप खुद को, इतनी नफरत की जरूरत नहीं है, फिजूल में खुद ही हल्कान हो रहे हैं। किताबों से दोस्ती रखिए, हिस्ट्री पढ़ें, प्रोपेगेंडा वाली हिस्ट्री मत पढ़िए, व्हाट्सएप वाली हिस्ट्री पे गौर करने की कतई जरूरत नहीं है। असल रिसर्च शुदा, तफ्तीश शुदा स्टडीज जो हैं, जो रिसर्च हैं, आप वो पढ़िए ढंग से, ठीक है। चलें, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।